ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
உஸ் மார்க் கா நாம் கே சாசா விதிருதி நாம், விதாரண கரெக்ட் பிரவிஷ்ட ஹோனே விதிருதி நாம் ஹோயா, திரிங் தாத்து விதிருதி விதாரண विधान फाड़ करके अंदर प्रवेश हुआ। ये द्वारा जो बच्चे को तेल लगाते हैं यहाँ, उस रास्ता से तेल जाता है। तद एतत् नांदनम, इसी रास्ता को नांदन कहा। इसी द्वारा से जो प्राण निकलता है ब्रह्मलोक आदि को प्राप्त करता है, इसलिए समृद्धि का स्थान है, आनंद का हेतु से इसको नंदन, नंदन सुख आनंद, नंदन को ही नांदन कहा। छांदस प्रयोग वैदिक प्रयोग है। ये मार्ग में परब्रह्म उसमें निकला, जब इस मार्ग में जाता है परमात्मा को प्राप्त करता है। ये प्रविष्ट हुआ जीव और उससे प्रविष्ट होकर के रहा, तब कहा तस्य त्रय आवश्यकता, तीन स्थान है आवश्यकता, आवश्यकता है तीन स्थान, वासस्थान है। तीन वासस्थान कैसे? जागृत अवस्था में इंद्रिय में रहता है, दक्षिण चक्षु में, दाहिने आंख में, स्वप्न काल में मन में रहता है, सरस्वती काल में हृदय में रहता है। ये तीन स्थान हुआ, अथवा तीन आवश्यकता है। पहले पिता के शरीर में अन्न रस वीर्य रूप से, पहले पिता के शरीर में, उसके बाद माता के शरीर में आएगा, गर्भ में रहेगा, मातृ गर्भाशय, फिर उसके बाद अपना शरीर जन्म होगा तो स्वप्न शरीर होगा। तो पिता शरीर, माता शरीर, अपना शरीर मिलकर तीन आवश्यकता, तीन स्थान हुआ। त्रय स्वप्ना, तीन स्वप्न है, स्वप्न जागृत, स्वप्न सुषुप्ति, तीनों को स्वप्न कहा। जागृत को स्वप्न तो प्रसिद्ध है, जागृत को भी स्वप्न कहा और सुषुप्ति को स्वप्न कहा। कहीं जागृत कैसे स्वप्न होगा, जग जाए, जग गया तो जागरण कैसे स्वप्न होगा? कहते स्वप्न ही है परमार्थ, जो आत्मस्वरूप के ज्ञान नहीं होने से, अज्ञान होने से स्वप्न के समान हुआ। सुषुप्ति में अज्ञान है, इसलिए कहा अयम आवश्यक, अयम आवश्यक, अयम आवश्यक कह करके दाहिने चक्षु प्रथम, मन हो गया द्वितीय, हृदय आकाश, ये बार बार का यही स्थान है, ही इसका स्थान है। ये तीनों अवस्था में रहता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में। स जात भूतानि अभिव्यक्षत किमिहान्यं भावदि सदिति स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमम अपश्यदिदर्शमिति तस्मादिदन्द्रो नाम इदन्द्रो हवे नाम तम इदन्द्रं संतमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण। परोक्ष प्रिया इव हि देवाः, परोक्ष प्रिया इव हि देवाः। स जात, शरीर में प्रविष्ट हुआ परमात्मा जीव और उसे जीवात्मना प्रविष्ट होकर के भूतानि अभिव्यक्षत, ये सब जितने अभिमुख तादात्म्य ने उसको कहा, अभिमुख अभिमुख होकर के, तद्रूप होकर के भूतों को सब देखा। ये सब देख करके सब भूतों को जान लिया, समझ लिया कि कैसा है, यही मैं हूं, भूत के साथ तादात्म्य भाव कर लिया। पहले प्रविष्ट हुआ उपाधि होकर जीव से, प्रविष्ट होकर के भूत भौतिक पदार्थ में अहम बुद्धि कर लिया। भूतानी अभिव्यक्त, भूतों को तादात्म्य ने कथन किया, उसमें अहम बुद्धि करके कहा मैं ही कान हूं, मैं ही मनुष्य हूं, मैं सुखी हूं, मैं ही दुखी हूं, ऐसे उसके तादात्म अभिमान हुआ। और तादात्म अभिमान होने के बाद और कहा किम यह अन्य बाब दिशा दीति, अन्य क्या है, मैं किसको अन्य कहूंगा, सब में अहम बुद्धि कर लिया। सहम अहम बुद्धि करके अपने से देह भूत भौतिक से अन्य कुछ नहीं जान सका, नहीं जानने से फिर किसको कहूंगा, यही शरीर को ही मैं करके सब में औपाधिक रूप देखा। औपाधिक रूप देखने के बाद जब कभी बहुत परम कारुणिक आचार्य प्राप्त हो करता है, आत्मज्ञान उपदेश होता है, वेदांत महावाक्य बार बार कर्णमूल में श्रवण कराते हैं, सुन सुन करके सृष्टि आदि करता परमात्मा, जो परमात्मा है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, सृष्टिकर्ता ही यहां प्रविष्ट हुआ है, समझ करके जो सृष्टिकर्ता परमात्मा मैं वही हूं, इसी प्रकार उसका वेदांत भाव किसे ज्ञान हुआ, तस एतमेव पुरुषम ब्रह्म, वही पुरुष ब्रह्म सृष्टिकर्ता अद्वितीय, ततमम तततमम व्यापक तम है, तततम में एक त का लोप करके लिखा है, बनाने का नहीं, ये वैदिक प्रयोग है। तततमम तत है व्याप्त, तततम का था व्यापकतम, व्यापकतम जितने व्यापक रूप से प्रसिद्ध है आपेक्षिक, एक अपेक्षा दूसरा अधिक स्थान, उसके अपेक्षा अधिक स्थान, ऐसे होकर के सबसे व्यापकतम जिससे बढ़कर और कोई व्यापक है ही नहीं, आकाश व्यापक रूप से प्रसिद्ध है उसे भी व्यापक है, तततम व्यापकतम शुद्ध ब्रह्म उसको साक्षात्कार कर लिया पश्यद। इदम अदर्शम इति, इदम अदर्शम इसको जान लिया, ज्ञान हो गया। इदम अदर्शम इति कौन से, उसका नाम इदंद्र है, इदम अदर्शम, इदम दर्शन किया, इदम तो अहम अस्मि से साक्षात्कार हो गया अपरुक्ष, उसका नाम तो इदंद्र हुआ, इदम आगे दृश्य धातु से द्रवने इदंद्र, इदंद्रो नाम होता हुआ भी इदंद्रो है वे नाम प्रसिद्ध है, उसको इंद्रम तम इदंद्रम संतम इंद्रम इत्याचिक्ष थे, नाम तो इदंद्र, इदंद्र को इंद्र शब्द से कहते हैं, इदंद्र को इंद्र क्यों कहते हैं, नाम है कुछ परोक्ष रूप से नाम का कथन करते हैं, पूरा साक्षात नाम का कथन नहीं करते, तो इदंद्र नाम होते हुए भी उनको इंद्र शब्द से कहते हैं परोक्षण, परोक्ष प्रिय इव ही देवा, परोक्ष प्रिय प्रिया इव ही देवा, आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेष्ठ कामुना गृह्यात ज्येष्ठापत्य कल त्रयो हो, आत्मनाम अपना नाम स्वयं कहना जब आवश्यक है तब तो कहना पड़ेगा, ऐसा बिना मतलब अपने नाम स्वयं कहना अच्छा नहीं माना जाता, नहीं कहे। गुरु का नाम भी आत्मनाम गुरुर नाम, गुरु जी का नाम कभी जरूरत पड़ता है तो अत्यंत आवश्यक तो कहीं करना पड़ता है तो सम्मान के साथ, नाम नहीं लेना है आत्मनाम गुरुर नाम, गुरु जी का नाम ऐसे नहीं लेते हैं। और नामातिकृपण से जो अतिकृपण है कंजूस ऐसे व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना, उसका तो स्मरण नहीं करना, उसका नाम भी नहीं लेना, कृपण है कंजूस है वो अनुकरणीय नहीं है, अनुकरण लोक में भी उस व्यक्ति को अच्छा कोई नहीं कहता है, कोई दान बदान दानशील है स्वभाव तो उपकार करता है उसका नाम सब लेकर देते हैं, तो कृपण का नाम लेना निषिद्ध है। आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपण से श्रेयस काम न गृण्य, जो श्रेय चाहता है इनका नाम नहीं ले निषिद्ध है। और ज्येष्ठापत्य कल त्रयो हो, ज्येष्ठापत्य बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र को बड़ा वही कुल का उद्धार करता है, पितृलोगों को पिंडदान करता है, ज्येष्ठ पुत्र बड़े पुत्र का नाम भी ऐसे नहीं लेते हैं, इसलिए उसको भी कहीं परोक्ष से अन्य कुछ नाम से बुलाते हैं। और कलत्र पत्नी का भी नाम लेने के लिए मना किया गया, पति का नाम लेना तो और दूर की बात है, पति का तो नाम नहीं लेना चाहिए, पति के नाम लेना उचित नहीं है, वो निषिद्ध शास्त्र में नाम लेकर नहीं बुलाना। लोक में आज कैसे बुलाते, दूसरे कोई यदि मालूम नहीं होगा लगेगा जैसे अपने नौकर को बुला रहे, इस नाम से बुलाते हैं, दूसरे कोई सुनेगा तो सोचेगा उसके घर में कोई लड़का होगा उसको बुला रहे। और पति कोई कोई बड़े खुश होते कि हमको इस नाम से बड़ा खुश लगता है, खुश तो कुछ नहीं किन्तु ऐसा है जब अच्छा लगता है तो कुछ भी कौन सा अच्छा है, अब बुरा लगेगा तो साहेब कहेंगे महाशय कहेंगे तो भी खराब लगेगा। कोई व्यक्ति आया दूसरे स्थान में कोई दूसरे बैठ गया था, कहा महाशय उठिए, बोला हम उठेंगे, महाशय क्यों कहा आपने, महाशय क्यों कहा, डांटा महाशय क्यों कहा, महाशय तो सम्मानी के लिए कि वो व्यंग से कहा था महाशय उठिए, बोला महाशय क्यों कहा, डांटा बड़े जोर से, महाशय आपने क्यों कहा, महाशय सार कहते महाशय कहते, वो तो पकड़ लिया ये क्योंकि वो महाशय जो कहा था व्यंग से कहा था, कहा हम तो उठ जाएंगे, आपने महाशय क्यों कहा, तो खराब लगता है तो महाशय शब्द ही खराब लगता है, जब अच्छा मानते जो कुछ भी कहे, किंतु शास्त्र में निषिद्ध है पति का नाम लेकर के कहना अनुचित है, कुछ अन्य नाम से कुछ नाम नहीं लेना जरूरत नहीं, अन्य के सामने भी पहले प्राचीन परंपरा है, अन्य के सामने भी पति की अनुपस्थिति में भी नाम नहीं लेते, अरे पति को नाम लेकर बुलाना तो और निंदित है, निकृष्ट है, निषिद्ध है। अन्य के सामने भी पति का नाम नहीं लेंगे, पति के नाम, पति के बड़ा भाई का नाम नहीं लेते हैं। किसी कोई भक्त, कोई माता बहुत परमात्मा से ध्यान करके गर्भ में हुआ, गर्भ में रहते समय परमात्मा सपने उसको दर्शन देकर कहे तुम्हारा पुत्र होने वाला है, खुश हो गई। पहले दुखी थी, पुत्र पहले के था, किंतु कुछ दिन तो पुत्र नहीं होने से बाद में लोग निंदा करने लगे। एक कहते काक बंध्या, कौवा के बच्चे ज्यादा नहीं होते हैं, एक कहते होता है तो एक दो ज्यादा ज्यादा एक, उसको तो बहुत दिन तक कौवा अपने बच्चा करके पालन करता है। अब देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा माता कौन बच्चा कौन। तो एक पुत्र होने के बाद दूसरा नहीं होने से कहते काक बंध्या, बंध्या जिसके पुत्र नहीं हो तो बंध्या, अधिक दिन पुत्र नहीं हो तो काक बंध्या। दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना के गर्भ में आया, तो परमात्मा ने उसको कहा तो पुत्र होगा। पुत्र होने के पहले जो या जन्म होने के बाद वो प्रार्थना किया क्या नाम रखेंगे, तो कुछ भगवान ने नाम कहा विश्वनाथ रखो। कहा हमारे जो माता है वो तो उसका नाम नहीं लेंगे विश्वनाथ नाम। क्यों नहीं लेंगे? न माता उनके पति के जेठ कहते उनका नाम विश्वनाथ है, इसलिए माता उसका नाम नहीं लेकर बुलाएंगे नहीं। हम पुत्र का नाम रखेंगे, उसका नाम हमारे माता नहीं लेगी, तो इससे तो नाम ठीक नहीं, इसे नाम होना चाहिए, क्योंकि उनके पिता, उनके पति के जेठ के नाम विश्वनाथ गुप्त, इसे माता उसका नाम लेकर इसको भी नहीं बुलाएगी, उसका नाम लेंगे ही नहीं। ऐसा नाम है पति के नाम, पति के बड़ा भाई का नाम है, तो मुख से उस नाम का उच्चारण ही नहीं करेंगे। उसके पुत्री का पुत्र हुआ उसका नाम वही रखा गया, तो भी उसको उसी नाम से नहीं बने, उसका नाम उच्चारण ही नहीं करेंगे। तो फिर वह सपने में उसको दूसरा नाम बताया, अमुक नाम रखो, फिर वो नाम रखा गया। अर्थात इतने तक है वो नाम माता नहीं लेगी हमारे बच्चे का नाम, क्योंकि उनके जेठ का नाम है, इस उसका नाम दूसरे रखने के लिए सपने में भगवान ने कहा, वो सपने में उसका नाम रखा गया। तो आत्मनाम, गुरुर नाम, नामाति कृपणस्य च, श्रेष्ठ काम न गृह्यात, ज्येष्ठा पत्य कलत्रयो हो, पत्नी का नाम लेने के लिए भी निषेध है। तो देवताओं का नाम परोक्ष लिया जाता है, इसे जो सम्माननीय है उनके सामने उनका नाम नहीं लेना चाहिए, जो नहीं जानते इसे नाम ले लेते हैं, इसे नाम नहीं लेना चाहिए। तो यहां परमात्मा का नाम तो इदंद्र होना चाहिए, वो ये परमात्मा जीव रूप से प्रविष्ट हुआ, इदंत ने साक्षात्कार कर लिया ब्रह्म को। इदंद्र होता हुआ भी उनको इंद्र शब्द से कहते हैं, कि सारे देवता सब परोक्ष प्रिय होते हैं, प्रत्यक्ष नाम लेने से उनको देश होता है, परोक्ष प्रिया वही देवा। त्रय आवश्यक कहा था, तीन स्थान, पिता के शरीर में, माता के शरीर में, फिर अपना शरीर, उसके लिए भी कहते हैं पुरुष हवा अयम आदि तो गर्भो भवती यद रेत तदेत सर्वेभ्यो अंगेभ्यो अंगेभ्य तेज संभूतम आत्मनिवात्मान विभर्ति तद यदा स्त्रियां सिंच तथे न जनेति तदस्य प्रथमं जन्म। पुरुषे हवा अयम आदि तो गर्भ होती, पहले कोई जन्म लेगा, पहले पिता के शरीर में पुरुष में गर्भ रूप से रहता है, गर्भ कैसे होगा? यद एतद रेत अन्न भक्षण करता है, उसके द्वारा ये जो स्वर्ग आदि जाता है, स्वर्ग के बाद आता है इस लोक में, वृष्टि आदि के द्वारा आ करके जमीन में पड़ा रहता है, आते समय कष्ट नहीं होता, क्षीण पुण्य मर्त्य लोक मिशंति इमा लोक मीन तरम्बा, नीचे आकर गिरा, फिर विधि आबाद अन्न के अंदर जाएगा, पुरुष उसको खाएगा, तो अन्न रस होकर के रेत बनेगा, आगे फिर माता गर्भ में आकर के गर्भ होगा। किंतु जो मिट्टी में पड़ता है वो पुरुष के शरीर आता है, इसमें बहुत काल कहीं कहीं बीत जाता है, कोई जरूरी नहीं कि ब्री धान यवादि में आ जाएगा, कभी घास पेड़ में आएगा, कोई खा लिया, पशु पक्षी जाकर कहीं गिर पड़ा, टटी कर कहीं छोड़ दिया, फिर कहीं कुछ हुआ, कहीं मरुभ में हुआ, ऐसे होते होते कभी संयोग बन गया, मिट्टी में गिरने के बाद पानी के साथ ब्री धान आदि पेड़ में आकर के धान के अंदर, गेहूं के अंदर, जव के अंदर आएगा, वो जीवात्मा उस समय उसको सुख दुख नहीं होता, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म रूप से अंदर आएगा, वो पुरुष खाएगा, अनर्स वीर्य होकर के शरीर में रहा, रेत रेत ये गर्भ जैसे हुआ पिता के शरीर में रहा, वह जो रेत होता है तद एत सर्वेभ्य अंगेभ्य तेज असंभूत, सारे अंग से ही सार रूप से वो हुआ, रसादि होकर के सार रूप शरीर का सार हो गया, निष्पन्न हो गया वीर्य शरीर के पूरा अंग से सार रूप, इसलिए तुसी वीर्य से जो उत्पन्न होता है जिस आकार पिता पिता के आकार जैसे मनुष्य का मनुष्य पशु का पशु पूरा अंग के सार निकला, आत्मनिव आत्मान विभर्तु सम पिता अपने आप को अपने सार रूप है अपने शरीर में ग्रहित रूप से रखता है, आत्मनिका तो शरीर में अपने को धारण करता है पिता जो रेत रूप हुआ, तद यदा स्त्रियाम सिंचती स्त्री में संबंध करके जो स्त्री गर्भ में आता है अथ एन स्त्री गर्भ में रहता है उसके बाद एन जनयति जन्म होता है पुत्र रूप से, तदस्य प्रथमम जन्म ये प्रथम जन्म हुआ, यहाँ ये कब अभी गर्भ के बाद नहीं, गर्भ में जो स्त्री गर्भ में आया पिता के शरीर से रेत रूप से स्त्री शरीर में आया ये हो गया प्रथम जन्म, रेत रूप से पिता के शरीर से निकली करके माता के गर्भ में आया ये प्रथम जन्म हुआ, उसके बाद माता के शरीर में रहने पर तस्त्रिया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वम अंगम तथा तस्माद् एनाम न हिनस्ति सास्येतम् आत्मानम् अत्र गतम् भावयति, तत् स्त्रिया आत्मभूयं गच्छति स्त्री के शरीर में जब आया पिता के शरीर से रेत रूप से, रेत रूप से आने के बाद भी स्त्री के आत्मभूय शरीर के आत्मा से शरीर से अभिन्न हो जाता है, शरीर से भिन्न कोई पदार्थ हो तो शरीर को कष्ट होता है, कोई अन्य पदार्थ होगा कोई छोटे कंकर आदि शरीर में प्रविष्ट होता है तो खराब करता है, शरीर में फोड़ा आदि होता है तो कष्ट होता है, किंतु ये जो रेत आता है स्त्री के शरीर के साथ अभिन्न होकर के रहता है तो आत्मा भी तो उसके शरीर जैसे हो जाता है, यथा स्वम अंगम जैसे अपने अंग है इसी प्रकार पिता के शरीर से रेत आया गर्भ में अपने अंग जैसे हो गया, तस्माद् एनाम न हिनस्ति इसे स्त्री माता को रेत जो पिता के शरीर से आया वो कष्ट नहीं देता है, नहीं तो अन्य कोई पदार्थ आएगा तो शरीर में कष्ट होगा, वो आकर के इसमें रहा न हिनस्ति कष्ट नहीं देता है, सा अस्येतम आत्मानम अत्र गतम भावेति और गर्भवती होने पर सा माता ये समता ये पिता के शरीर से आया ये पिता के आत्मरूप से अंग से सार निकला वो इस रेत रूप से आया गर्भ में है करके उसके बढ़ाती पालन करती है माता, पालन करने के लिए विरुद्ध वजन कुछ गर्भ में होते समय क्या खाना क्या नहीं खाना वैद्य लोग को बताते हैं, विरुद्ध भोजन आदि नहीं करके अनुकूल भोजन करके बहुत शरीर में हिलना डुलना ज्यादा नहीं करके उसको बढ़ाती है, सा भावयित्री भावयित्व्या भवती तम स्त्री गर्भम विभर्ती स्व अग्र एव कुमारम जन्मनु अग्रे अधिभावयति सत्कुमारम जन्मनु अग्रे अधिभावयति आत्मानमेव तद भावे तेषां लोकानां संतत्या एवं सततदा एवं संततायि मे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म, सा भावयित्री माता गर्भ को बढ़ाती है रक्षा करती है, ऐसे माता भावयित्व्या भवति पिता उसको रक्षा करना चाहिए, जिसके गर्भ में पत्नी है उसके गर्भवती के पति उसकी रक्षा करते हैं भोजन आदि दे करके और प्रेम से रखते हैं, गर्भ के समय कष्ट नहीं देना ज्यादा परिश्रम नहीं करना अनुकूल भोजन दे करके उसके प्रेम से भावयित्व्या भवति, तो हम स्त्री गर्भम विवर्ती क्योंकि स्त्री उस गर्भ को बढ़ाती धारण करती है पिता से आया, और ये परस्पर उपकार प्रत्युपकार करने से ही संबंध होता है, इसलिए स्त्री गर्भ में उसको धारण करती है और उसके पति उसको प्रेम से रखते हैं आगे गर्भ में है करके ऐसे देकर उसके उपकार करते हैं प्रेम से गर्भ रहता है, उसके बाद जन्म होने के बाद पिता अग्र एवं कुमारम जन्मन अग्र अधिभावयति जब जन्म होता है पहले उसको अधिभावयति उसके जन्म के पश्चात जात कर्मादि संस्कार कराता है, जात कर्म आदि करके उसको जो निष्पन्न करता है, संस्कार आदि करता है, आत्मा नहीं वक्त भावयती, अपने के ही अपना ही करता है, क्योंकि स्वयं ही पुत्र रूप से आया, अपने अंग के सार रूप से रेत पहले होकर के गर्भ में आकर के पुत्र हुआ। इसे शास्त्र में कहीं कहा गया पतिर जायाम प्रविशति, पति स्वयं पत्नी में प्रविष्ट हो गए रेत रूप से, जन्म है तो पुत्र को अपने आत्म रूप से कहते हैं, स्वयं अपना ही संस्कार करता पिता, पुत्र को अपने आत्म रूप से मानते हैं, पुत्र ऐसे होता है प्रिय अपने से अपने जैसे, तो शास्त्र में कहा गया स्वयं ही पुत्र रूप से होता है, इसे अपने ही बढ़ा अपने को ही बढ़ाता है, ये पुत्र का संस्कार करता है। स यत कुमारम जन्मनो अग्र अधिभावेती, जात कर्मादि करता है आत्मानमेव तद्भावेती, अपने ही संस्कार करता है, अपने ही सब कुछ करता है, पुत्र अपना स्वरूप ही है, ऐसे करके जन्म होता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसाम लोकानाम संतति, ये लोक पुत्र पौत्र आदि प्रजा की संतति रहे, संतति विच्छेद नहीं हो, पुत्र उसका पुत्र उसका पुत्र ऐसा होना चाहिए, पितृऋण का शोधन होता है, पिता के ऋण पुत्र होने पर ही पिता ऋण मोचन होता है, और पुत्र जन्म करके फिर उसको आगे शिक्षा आदि प्रदान करके प्रतिनिधि बनाता है पुण्य कर्म करने के लिए, तब यही लोका तदस्य द्वितीय जन्म हुआ, पुत्र रूप से जन्म हुआ। जन्म होने के बाद स्वस्यायाम आत्मा पुण्येभ्य कर्मभ्य प्रतिदीयते, अथस्यायाम इतर आत्मा कृत कृत्यो वायुगत प्रीति, सहित प्रयनेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयम जन्म, प्रथमे गर्भ से पिता के शरीर से रेत रूप से आया प्रथम जन्म हुआ, द्वितीय जन्म हुआ जो गर्भ से जन्म हुआ द्वितीय जन्म हुआ, उसके बाद पिता क्या करता है, अस्य अयम आत्मा जो पुत्र रूप से जन्म हुआ अपना आत्मा पुण्येभ्य कर्मभ्य प्रतिध्यति, पुण्य कर्म करने के लिए उसको प्रतिनिधि बनाता है, ये बृहदारण्यक माता है संप्रति कर्म, संप्रति है संप्रदान, पिता को पिता पुत्र को प्रतिनिधि बनाता है, वो अंत में उपदेश करता है, पिता उसको उपदेश करता है त्वम ब्रह्म त्वम यज्ञ त्वम लोक, पुत्र को कहा पुत्र पहले वेद आदि अध्ययन किया मालूम है, पिता वृद्धावस्था को आने पर पुत्र को कहेगा त्वम ब्रह्म त्वम यज्ञ त्वम लोक, अब पिता भी पुत्र भी अनुसूचित है, पिता के सुनकर के वचन कहता अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम लोक, पहले कहता त्वम ब्रह्म ब्रह्म है वेद, वेद अध्ययन मैंने जो किया है किया है, बाकी आगे वेद अध्ययन तुम करना त्वम ब्रह्म कह करके, उसके बाद त्वम यज्ञ कहता है तुम ही यज्ञ, यज्ञ कर्म मैंने जो किया है जो कुछ किया किया, आगे यज्ञ कर्म तुम करना, प्रतिनिधि पिता पुत्र को बनाता है, पुत्र कहता अहम यज्ञ, कहता मैं ही यज्ञ करूंगा मैं वेद पढ़ूंगा अहम ब्रह्म अहम यज्ञ, पिता कहता त्वम लोक, लोक में कर्म करके पितृलोक स्वर्ग लोक जो जीता पुण्य कर्म करके, आगे तुम लोक प्राप्ति के लिए साधन करना, त्वम लोक पुत्र कहता अहम लोक, तीन दायित्व देता है, वेद अध्ययन तुम करना है, यज्ञ आदि कर्म करना है, निष्काम अग्निहोत्र आदि कर्म अवश्य करना है, और लोक प्राप्ति का साधन सकाम कर्म जो मैंने किया था तुम भी आगे कर्म करना है, ये तीन दायित्व उसको देता है, कर्मणा पितृलोक प्राप्त होता है विद्या देवलोक है, तो ये उपदेश करता है, तो फिर पुत्र स्वीकार करता है अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम लोक।